हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद पंचम अध्याय श्लोक संख्या 11। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति निष्ठिके। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति ये स्तवे वेदे साङ्गपत् कमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तत् गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राज श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय हो। श्रीमद्भागवतम महापुराण के प्रथम स्कंद के पांचवें अध्याय का हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है नारद द्वारा व्यास देव को श्रीमद् भागवतम का उपदेश देना। जैसे कि हम सब जानते हैं कि वेद व्यास जी ने अनेक शास्त्र लिखे, परंतु उनको संतुष्टि प्राप्त नहीं हो रही थी, तो उनके गुरु महाराज नारद को उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई और कहा, अब मेरे हृदय में जो दोष है उसको खोज के निकालिए, मेरे उस रोग का समाधान कीजिए जिसके कारण मैं संतुष्ट नहीं हो रहा हूँ। तो नारद मुनि ने उन्हें बताया, भवतानुदित प्रायं यशो भगवतो मलं ये नैवासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनं खिलं। कि आपने अपने शास्त्र में यशो भगवतो मलं भगवान के यश का वर्णन तो किया ही नहीं है, और ये नए वासव न तुष्येत जो दर्शन, जो साहित्य, जो शास्त्र भगवान को प्रसन्न नहीं करता है, मन्ये तद् दर्शनम् खिलम्, वो वास्तव में बिल्कुल घटिया है, निम्न कोटि का शास्त्र है, उस वो मतलब व्यर्थ है, बेकार है, जिसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं हो, भगवान के लिए प्रेम का संदेश नहीं हो, तो वो शास्त्र तो बिल्कुल बेकार है। इसके कारण आपको संतुष्टि नहीं मिली है। और आगे कहा, यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णित। हे मुनिवर, यथा धर्माधयश्चार्थ, भले आपने धर्म आदि चार पुरुषार्थों के विषय में अत्यंत ही विस्तार से बताया है, परंतु न तथा वासुदेवस्य महिमा, वासुदेव की महिमा को ह्यनुवर्णित, उसको तो अच्छे तरीके से वर्णित किया ही नहीं है। उनको भी भगवान वासुदेव की जो बहुत ही सुंदर, मधुर और कल्याणमयी लीलाएं हैं, भगवान जो समस्त समग्र सृष्टि का कल्याण कर सकते हैं, उनके विषय में तो तुमने कुछ भी नहीं बताया। और उनको भी एक साधारण देवी देवताओं के साथ है ना, और साधारण महाभारत का एक पात्र बनाकर बता दिया, तो फिर साधारण लोग जो वैसे ही मूर्ख हैं, वो तो कभी भगवान को पहचान ही नहीं सकेंगे। इसलिए आपको संतुष्टि प्राप्त नहीं हो रही है। और उसके बाद हमने कल श्लोक पढ़ा, श्लोक नंबर 10, उसमें नारद मुनि ने बताया कि वो साहित्य जिसमें भगवान के विषय में नहीं लिखा होता है, वो कैसा होता है? नायत वचन क्षेत्र पदम हरिर्यशो जगत पवित्रम प्रगणित करहि चेत् तत्वाय संदीतमोषति मानसा न यत्र हंसा निरमन्तु शिक्षया। अर्थात जो शास्त्र वचनश्चित्र पदम हरेर यशो, यानी जिसमें भगवान हरि का यश नहीं बताया गया है, वो भगवान हरि जगत पवित्रम प्रगृहीत करहिचित, कि जो समस्त आफतों से, समस्त कष्टों से, समस्त मुश्किलों से जगत को पवित्र कर देता है, वैसा शास्त्र जिसके अंदर भगवान के यश का गुणगान नहीं किया गया है, तद्वायसम तीर्थमुशंत मानसा, वास्तव में तो वो कौवों का तीर्थ है, यानी कि ऐसे लोग उधर जाते हैं जो कौवों के सदृश होते हैं। ऐसा साहित्य जिसमें भगवान के विषय में नहीं बताया जाता है, वहां पर कभी परमहंस, भगवान के शुद्ध भक्त कभी भी वेद शास्त्र को पढ़ते ही नहीं है, तो फिर वहां पर बताया न यत्र हंसा निरमंत्य शिक्षित शिक्षा, के जो हंस की भांति भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनको ऐसे शास्त्रों में कोई रुचि नहीं होती है। और आज इसी बात को आगे बढ़ाते हुए नारद मुनि एक और बात बता रहे हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में भक्तों, ये श्लोक श्री रूपा जी को बहुत अत्यंत प्रिय लगता है, और वो अक्सर इनको इस श्लोक को कोट करते हैं, बताते हैं। जब हम पढ़ेंगे तो आप सबको याद आ जाएगा कि श्री रूपा जी इसको कहते हैं अक्सर। इस श्लोक में श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि इस संसार में क्रांति कैसे उत्पन्न हो सकती, इस संसार में क्रांति कैसे आएगी। मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए अत्यंत सुंदर श्लोक। सर्गो जनता कविप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमभ धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव तद्वाग्विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमभदवत्यपि नामान्यन्नन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा तत्त्वाद्विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमभदवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा तद्वाग्विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमभदवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा तद्वाग्विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबधवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशो अङ्कितानि यत् श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा तत्त्वाग्विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमभदवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः शब्दों का अर्थ तत् वाक् विसर्ग तत् मन उस वाक् यानी वाणी विसर्ग अर्थात सृष्टि जनता यानी जनसामान्य अघ यानी पाप विप्लवः क्रांतिकारी यस्मिन् प्रतिश्लोक अभद्धवत् यस्मिन् मतलब जिसमें प्रतिश्लोक प्रत्येक श्लोक में अभद्धवती अर्थात अनियमित रूप से मतलब सही तरह से नहीं बता अबद्ध जैसे बद्धवती होता है ना एकदम अच्छी परफेक्ट तरीके से लेकिन अबद्धवती का मतलब होता है अनियमित रूप से रचा गया है अपि होते हुए भी नामानी अर्थात दिव्य नाम आदि अनंतस्य असीम भगवान के यश अर्थात महिमा इंकितानी यत इंकितानी मतलब चित्रित यत जो श्रवन्ति अर्थात सुनते हैं गायन्ति अर्थात गाते हैं गृह्णन्ति अर्थात स्वीकार करते हैं साधवा अर्थात शुद्ध मनुष्य जो ईमानदार है अनुवाद दूसरी ओर जो साहित्य असीम परमेश्वर के नाम यश रूप तथा लीलाओं की दिव्य महिमा की चर्चाओं से पूर्ण है वह कुछ भिन्न ही रचना है जो इस जगत की गुमराह सभ्यता के अपवित्र जीवों में क्रांति लाने वाले दिव्य शब्दों से ओतप्रोत है ऐसा साहित्य चाहे वह ठीक से न भी रचा गया हो नितांत ईमानदार पवित्र व्यक्तियों द्वारा सुना गाया तथा स्वीकार किया जाता है तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय हो श्रील प्रभुपाद जी आज उन शास्त्रों की महिमा बता रहे हैं जो भले ही अच्छे ढंग से रचे नहीं गए हैं लेकिन उनके अंदर भगवान के विषय में बात की गई है यदि वो भगवान के पवित्र गुणगान से ओतप्रोत है तो ऐसा शास्त्र ऐसा साहित्य संसार के जो अभद्र लोग हैं, जो गुमराह सभ्यता वाले अपवित्र जीवन में अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, उनके अंदर क्रांति लाने वाले दिव्य शब्द से वो ऐसा शास्त्र होता है जो साधु पुरुष लोग ऐसे शास्त्रों को गाते हैं, सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं। श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि महान चिंतकों की विशेषता है कि वे बुरे में से भी श्रेष्ठतम को खोज निकालते हैं। कहा जाता है कि बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि विष के कुंड से अमृत ग्रहण कर ले, गंदगी में भी पड़े सोने को स्वीकार करे, अज्ञात कुल की भी उत्तम तथा योग्य पत्नी ग्रहण कर ले और अछूत से या अछूत कुल से संबंध गुरु से सद उपदेश प्राप्त करे। ये कुछ नैतिक शिक्षाएं हैं जो सभी स्थानों पर बिना किसी अपवाद के हर एक पर लागू होती हैं। लेकिन एक संत सामान्य व्यक्ति से काफी उच्च स्तर पर होता है। वह निरंतर परमेश्वर की महिमा गान में व्यस्त रहता है, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र नाम तथा यश का प्रसार करने से जगत का दूषित वातावरण बदल सकता है और श्रीमद् भागवतम जैसे दिव्य साहित्य के प्रसार से लोग अपने व्यवहारों में समझदार हो सकते हैं। श्रीमद् भागवत के इस श्लोक की व्याख्या करते हुए हमारे समक्ष संकट उत्पन्न हो गया है। हमारे पड़ोसी मित्र चीन ने भारत की सीमा पर सैनिक आक्रमण कर दिया है। यद्यपि राजनीतिक क्षेत्र से हमें कोई सरोकार नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि इसके पूर्व भी भारत तथा चीन थे और दोनों ही देश बिना किसी दुर्भावना के शक्तियों से शांतिपूर्वक रहते थे। इसका कारण यह है कि इन दिनों ईश्वर चेतना का वातावरण था और इस महिमंडल का प्रत्येक देश ईश्वर से डरता था, शुद्ध हृदय वाला तथा सरल था और राजनीतिक राजन्य की कोई आवश्यकता नहीं थी। चीन तथा भारत देशों की बीच उस भूमि को लेकर कोई झगड़ा ना था जो बसने के लिए उपयुक्त ही नहीं है और इस मामले पर युद्ध करने का कोई कारण भी नहीं है। किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि कलह के युग में कली के कारण थोड़ी सी उत्तेजना से झगड़ा हो जाता है। यह किसी अन्य कारण से नहीं अपितु इस युग के दूषित वातावरण के कारण से है। एक वर्ग के लोग परमेश्वर के नाम तथा यशोगान को रोकने के लिए नियमबद्ध प्रचार कर रहे हैं। अतएव विश्व भर में श्रीमद् भागवतम के संदेश को प्रसारित करने की परम आवश्यकता है। प्रत्येक उत्तरदायी भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वो श्रीमद् भागवतम के दिव्य संदेश को सर्वोपरि कल्याण तथा वांछित शांति लाने के लिए विश्व भर में प्रसारित करे। चूंकि भारत ने अपने इस उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य की उपेक्षा की है, अतएव सारे विश्व में संघर्ष हो रहा है तथा संकट छाया हुआ है। हमारा विश्वास है कि यदि श्रीमद् भागवतम का दिव्य संदेश विश्व के अग्रणी लोग तक पहुंच सकेगा तो निश्चित रूप से हृदय परिवर्तन होगा और लोग सामान्यतः इस संदेश का पालन करेंगे। जनता आधुनिक राजनीतिज्ञों तथा नेताओं के हाथ की कठपुतली बन गई है। यदि इन नेताओं के ही हृदय परिवर्तित हो सकें तो विश्व के वातावरण में आमूल परिवर्तन हो सकेगा। हमें पता है कि जन सामान्य में ईश्वर चेतना को जगाने तथा विश्व वातावरण का पुनः आध्यात्मिकरण करने के लिए दिव्य संदेश वाले इस महान ग्रंथ को प्रस्तुत करने का सद प्रयास अनेक कठिनाइयों से पूर्ण है। इस विषय को यथेष्ट भाषा में, विशेषतया विदेशी भाषा में प्रस्तुत करना निश्चित रूप से विफल प्रयास होगा। और हम चाहे जितनी भी प्रयास करें, इसमें अनेक साहित्यिक त्रुटि रह जाएगी, लेकिन हमारा विश्वास है कि इस संबंध में चाहे कितनी भी त्रुटियां रह जाएं, विषय की गंभीरता पर विचार किया जाएगा और समाज के कर्णधार अर्थात नेता इस ईमानदार प्रयास को सर्वशक्तिमान भगवान के महिमा गान के रूप में स्वीकार करेंगे। जब किसी घर में आग लग जाती है तो उस घर के रहने वाले अपने पड़ोसियों से, चाहे वे विदेशी हों, सहायता प्राप्त करने के लिए दौड़े जाते हैं और वे बेचारे उनकी भाषा ना जानते हुए भी अपने भाव युक्त करते हैं और पड़ोसी उनकी आवश्यकता समझ लेते हैं। भले ही वे भाव उनकी भाषा में व्यक्त ना हुए हों, श्रीमद् भागवतम के इस दिव्य संदेश को विश्व के प्रदूषित वायुमंडल में प्रसारित करने के लिए वैसी ही सहयोग भावना की आवश्यकता है। आखिर यह आध्यात्मिक मूल्य से युक्त प्राविधिक विज्ञान है, अतएव हमें प्रविधियों के विषय में चिंतित होना है, भाषा के विषय में नहीं। यदि इस महान साहित्य अर्थात ग्रंथ की प्रविधियों को विश्व के लोग समझ जाएं, तो उन्हें सफलता मिल सकती है। जब विश्व भर की जनता में अनेक भौतिकतावादी कार्यकलाप चलते रहते हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि कोई व्यक्ति या राष्ट्र तनिक सी उत्तेजना पर किसी अन्य व्यक्ति या राष्ट्र पर आक्रमण कर दे। इस कली या कलह युग का यही नियम है। वातावरण पहले से सभी तरह से भ्रष्टाचार से प्रदूषित है और प्रत्येक व्यक्ति इससे भली भांति अवगत है। इंद्रिय तृप्ति के भौतिकतावादी विचारों से पूर्ण ना जाने कितना अवांछित साहित्य भरा पड़ा है। अनेक देशों में अश्लील साहित्य की जांच करने तथा उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार द्वारा उनकी अनेक समितियां नियुक्त की जाती हैं। इसका अर्थ यही है कि ना तो सरकार ना ही उत्तरदायी जन नेता ऐसे साहित्य चाहते हैं, तो भी यह बाजारों में मिलता है क्योंकि लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए उसे चाहते हैं। सामान्यतः लोग अन्य प्रकार के साहित्य पढ़ना चाहते हैं, यह प्राकृतिक प्रवृत्ति है, लेकिन चूंकि उनके मस्तिष्क दूषित हैं, अतएव वे ऐसा साहित्य पसंद करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में श्रीमद् भागवतम जैसे दिव्य साहित्य से न केवल सामान्य जनों के भ्रष्ट मन के कार्यकलाप घटेंगे, अपितु यह उनकी उस चाह को शमित करेगा जिसके लिए वे रोचक साहित्य पढ़ना चाहते हैं। प्रारंभ में वे इसे पसंद नहीं करेंगे क्योंकि जिसे पी लिया हो जाता है वह मिश्री नहीं खाना चाहता, लेकिन हमें यह ज्ञान होना चाहिए कि मिश्री ही पीलिया का उपचार है। इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम के पठन को लोकप्रिय बनाने का विधिवत प्रचार कार्य होना चाहिए, क्योंकि यह इंद्रिय तृप्ति रूपी पीलिया के लिए मिश्री का काम करेगा। जब लोग इस साहित्य के लिए रुचि उत्पन्न कर लेंगे तो वह अन्य साहित्य जो समाज में विष फैला रहा है स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अतः हमारा विश्वास है कि मानव समाज का प्रत्येक व्यक्ति श्रीमद् भागवतम का स्वागत करेगा, भले ही उसके प्रस्तुत रूप में अनेक त्रुटियां क्यों न हो, क्योंकि इसकी संस्तुति श्री नारद ने की है जो कृपा करके इस अध्याय में प्रकट हुए हैं। श्रील प्रभुपाद की जय हो। भक्तों, श्रील प्रभुपाद जी के जो शब्द है ना, वो ऐसा नहीं है कि आप जब उन्होंने लिखे हैं उसी समय के लिए ये उपयुक्त है। उनका एक एक शब्द, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं मैं अभी भी जीवित हूँ अपने शब्दों के द्वारा। आज हमारे ऊपर जो बीत रही है वो हम सब जानते हैं, विश्व का कितना घिनौना रूप सामने आ रहा है। तो उस समस्त अपवित्रताओं, अशुद्धियों और हृदय की मलिनता को दूर करने का उपाय बता रहे हैं आज श्री प्रभुपाद जी ने। जिस समय ये शास्त्र श्रीमद् भागवत महापुराण का ये पर्पट लिखा था, उस समय क्या हुआ था? 1962, याद है किसी को? आप में से कोई शायद वहां तब उस समय तो होगा ही नहीं। 1962 में भारत और चीन के मध्य में युद्ध हुआ था। श्री प्रभुपाद जी ने बताया, वैसे तो हमें राजनीति और पॉलिटिक्स में कोई भी रुचि नहीं है, लेकिन भारत और चीन के विषय में हम पढ़ते हैं, देखते हैं, आज हम पता चल रहा है कि पहले मित्र थे और अब झगड़ा हो गया। एक जमीन का बेकार सा टुकड़ा जो किसी भी कार्य नहीं कारण कोई भी बिल्कुल बेकार है, व्यर्थ है, उसके कारण ये झगड़ा हो रहा है, सब आपस में लोग मर रहे हैं। श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं वास्तव में झगड़े का कारण भूमि नहीं है, कलयुग के कारण ये सब हो रहा है। ये कलह प्रद जो युग है, जिसका कलह का मतलब ही है झगड़ा, तो ये कलयुग भूत की तरह सबके पीछे लगा हुआ है। जब किसी व्यक्ति के ऊपर भूत लग जाता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? ये पागल हो गया है। उसी तरह जो कलयुग का शिकार हो जाता है ना, वो भी पागल हो जाता है। आज भी हम देखते हैं लोग स्कूल में जाकर मासूम बच्चों को मार रहे, ये सब कलयुग की निशानियां हैं, इससे उनको कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन सब लोग पागल हो गए हैं। धीरे धीरे ये कलयुग का प्रभाव हर जगह हर नगर में फैल रहा है, और ऐसे समाज में श्री प्रभुपाद जी ने बताया कि एक बहुत ही शक्तिशाली वर्ग है जो बड़े सिस्टमेटिकली भगवान के गुणगान को बंद करना चाहता है। नाम तो अलग अलग है, कुछ लोग उसे विज्ञान कहते हैं, कुछ भौतिकतावाद कहते हैं और कुछ प्रगति। तो अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि किस तरह से भगवान के गुणगान को खत्म किया जाए। आज हमारी न्यू जनरेशन जो एजुकेशन प्राप्त कर रही है वो सब वेस्टर्न कंट्रीज के प्रभाव के कारण हमारी सारी न्यू जनरेशन कलयुग के चेले बनते जा रहे हैं। कलयुग उनके रगों में भर दिया गया है, वो सत्कार वो सम्मान जो शास्त्रों में बताया जाता है कि माता पिता का कैसे सम्मान करना होता है, अपने धर्म का किस तरह से बात करनी होती है, कैसे प्रणाम करना होता है, कैसे आशीर्वाद लेना होता है, कैसे आज्ञा का पालन किया जाता है, सारे संस्कार लगभग खत्म हो चुके हैं। और इसका कारण केवल यही है कि भागवत धर्म का प्रचार नहीं हो रहा है। भागवत धर्म जिसके विषय में बताया नहीं जा रहा है, हालांकि जो नेता हैं और जो सरकार है वो ये नहीं चाहती है कि संसार में लोग जो हैं वो इस तरह के अश्लील शास्त्र पढ़ें, यानी कि वो किताबें जो इंद्र तृप्ति पर केंद्रित होती हैं वो नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि जीव की बुद्धि इतनी भ्रष्ट की गई है, आज का मनुष्य उसी में आनंदप्रद उसी में आनंदित होता है। ऐसी शास्त्र ऐसी किताबें जो इंद्र तृप्ति का प्रदर्शन करती हैं, यानी कि ऐसे टीवी में भी ऐसी सीरीज आती हैं, ऐसी वीडियोस ऐसी फिल्में बनाई जाती हैं, ऐसे साहित्य दिए जाते हैं आज के इस जनरेशन को, जिससे ज्यादा से ज्यादा आपकी काम वासना उभरे, ज्यादा से ज्यादा काम वासना जो है वो आपके अंदर ऐसे ही साहित्य बताए जा रहे हैं। लेकिन श्री प्रभुपाल जी कह रहे हैं ये इसलिए हो रहा है क्योंकि भागवत धर्म का प्रचार नहीं हो रहा है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज बोल रहे हैं कि इस संसार में किसी चीज की कमी नहीं है सिवाय कृष्ण भावना भावित होने की। कृष्ण भावना अमृत का प्रचार हो इसके अतिरिक्त और सब कुछ है संसार में। तो अगर शुरू शुरू में भले ही लोग को अच्छा नहीं लगेगा, श्री प्रभुपाद जी ने बताया कि क्योंकि सब लोग पीलिया से ग्रस्त हैं, तो पीलिया से जो ग्रस्त हो जाता है उसको मिश्री अच्छी नहीं लगती है, लेकिन पीलिया के रोग का उपचार केवल मिश्री ही है। तो भले शुरू में हमें भगवान का नाम लेना, श्रीमद् भगवद गीता मैं कब से बोल रही हूँ कि भाई आप लोग जिधर से भी भगवद गीता जहाँ तक सीखी है आप लोग को पढ़ना है, बताना है, दूसरों को यही काम करना है, इसी से क्रांति होगी। नहीं, हमारे लोग सुनना नहीं सुनना चाहते, फिर भी सुनाओ, कैसे भी करके भागवत गीता और भागवतम का प्रचार होना अनिवार्य है। जब तक नहीं होता है तब तक क्रांति नहीं आएगी, तब तक लोगों का हृदय पवित्र नहीं होगा। और श्री प्रभुपाल जी आज यही बता रहे हैं कि भले ही शुरू शुरू में उनको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जैसे जैसे सुनते जाएंगे तो जो भी रोग हैं संसार के, जितने भी कलयुग के कारण जितने भी रोग हैं, जितनी भी अशांति है, जितना भी भ्रष्टाचार फैल रहा है, वो समाप्त हो जाएगा, स्वतः समाप्त हो जाएगा। आप कृत्रिम विधि से इन सबको रोक नहीं सकते जब तक कि जीव का हृदय पवित्र नहीं होता है। तो श्री प्रभुपाल जी कहते हैं हमारा विश्वास है कि मानव समाज का प्रत्येक व्यक्ति श्रीमद् भागवतम का स्वागत करेगा जब उनका हृदय पवित्र हो जाएगा। तो हमें ये न कहना प्रकार भगवान के इस पवित्र नाम को सबको सुनाना है, भगवान के शब्दों को, जो शब्द भगवान के मुख से निकले हैं श्रीमद् भगवद गीता के रूप में, वो कोई साधारण शब्द नहीं है, वो क्रांति लेकर आएंगे। अब यहाँ पर हम शुरू में जो श्लोक है उससे पढ़ते हैं कि श्लोक का क्या अर्थ है, ये तो एंड में मैंने तात्पर्य बताया आपको। श्री नारद जी कहते हैं तद वाक, वाक कहते हैं वचन को, जो शब्द होते हैं कौन से, नामान्यनंतस्य यशोंकितान्यत्, अर्थात भगवान के यश का वर्णन करते हैं, जो भगवान के नाम गुण और लीलाओं का वर्णन करते हैं वो क्या करते हैं। भगवान के नारद मुनि कह रहे हैं जनताघ विप्लव, जनता कहते हैं जो सामान्य जनता होती है उसको, और अघ का मतलब होता है अपराध, विप्लव का मतलब होता है क्रांतिकारी। अर्थात नारद मुनि बता रहे हैं कि ऐसे शब्द जो कृष्ण के नाम गुण लीलाओं का वर्णन करते हैं, भगवान के यशो का गान करते हैं, वे क्रांति उत्पन्न कर सकते हैं। कैसी क्रांति, क्या मतलब है क्रांति का। वैसे तो हर जगह पर क्रांति हो रही है आज, परंतु ये क्रांति जो युद्ध बंदूक बॉम्ब ब्लास्ट इससे हो रही है ये वास्तविक क्रांति नहीं है। शास्त्र कहता है वास्तविक क्रांति है हृदय के अंदर पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट हो जाए। यानी आज का समाज इस सारे जो युद्ध है कला है झगड़ा उसको खत्म करने के लिए अपोजिट साइड से भी युद्ध कला और ये सब बॉम्ब ब्लास्ट ये जो न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह बनाते हैं इससे कभी भी युद्ध समाप्त नहीं होगा, इससे कभी भी क्रांति उत्पन्न नहीं होगी। वास्तव में क्रांति तब होगी जब हृदय से पाप करने की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी। क्या इस संसार में कोई ऐसा हथियार है जो ना केवल अपराध को बल्कि अपराध करने की प्रवृत्ति को समाप्त कर सके। इस दुनिया के लोग ये नहीं जानते हैं कि जब तक हृदय से पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट नहीं होती है और जब तक हृदय में भगवान का शुद्ध प्रेम और भक्ति उत्पन्न नहीं होती है, तब तक ये सब अत्याचार कभी खत्म नहीं होगा। ये युद्ध, ये बंदूकें, ये बम ब्लास्ट, ये हत्याएं, ये निरपराधों का रोज रोज जो खून बहता है, ये सब चलते रहेंगे, ऐसा ही होता रहेगा, कोई समाधान नहीं। आज दो देशों में युद्ध है, कल तीसरे के साथ भी युद्ध करना शुरू हो जाएंगे। फिर पहले जो दो दुश्मन थे वो बहुत बाद में दोस्त बन जाएंगे। फिर तीसरे को मारेंगे, उसको नाश करने का उसके साथ झगड़ा शुरू कर देंगे। ये संसार है, यहाँ पर मित्रता शत्रुता सब कुछ भी स्थिर नहीं है। कभी किसी के साथ मित्रता हो जाएगी, कभी किसी के साथ शत्रु। वो उसका इतना जो कल किसी से प्रेम करता था वो आज उसके जान का दुश्मन बन जाएगा। और इसी तरह एक देश, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, एक गांव दूसरे गांव से, एक शहर दूसरे शहर से, एक कंट्री दूसरे कंट्री से सदैव झगड़ा करते रहेंगे जब तक उनका हृदय पवित्र नहीं हो जाता है। इसलिए सबसे बड़ी क्रांति क्या है? हृदय का परिवर्तन। और हृदय का परिवर्तन कैसे होगा? केवल भगवान श्री कृष्ण के गुणगान करने से। कितनी सुंदर बात और कितनी गहरी बात नारद मुनि यहाँ पर बता रहे हैं। इसलिए ये सिद्धांत हर जगह फैलाना चाहिए। नारद मुनि कहते हैं, श्रवन्ति गायन्ति ग्रहणति साधवा। जो वास्तव में साधु पुरुष होते हैं, जिन्होंने अपने इंद्रियों को वश में कर रखा है, हृदय से अपराधों को नष्ट किया हुआ है, जो वास्तव में सज्जन है, वही लोग इस हरि नाम के गुणगान को स्वीकार करते हैं। सज्जन, सज्जन किसको बोलते पता है? सज्जन का मतलब होता है जो सत्य, अर्थात सत्य के मार्ग में जो चल रहे हैं। इस संसार में हम देखते हैं लोग अपने आप को बहुत सोफिस्टिकेटेड मानते हैं, केवल टाई लगाकर, कोट पहनकर, सूट पूट पहनकर। आजकल जिसके पास गाड़ी है, बंगला है और पैसा है और अंग्रेजी में बोल देता है, समझते हैं भाई सबसे बड़ा सज्जन वही है। वास्तव में शास्त्र कहता है जो भगवान का भक्त है, जो भगवान का गुणगान करता है, जो भगवान के यश को श्रवण करने में रुचि रखता है, वही सज्जन है। और बाकी जो भी हैं वो सब दुर्जन हैं। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, विफल सेवना कृपा दुर्जन। हे कृष्ण, मैंने अपना सारा जीवन व्यर्थ में गवा दिया। क्यों? क्या किया उन्होंने? वो कहते हैं, क्योंकि ऐसे दुर्जनों की सेवा की जिनकी सेवा करने से कोई आध्यात्मिक फल प्राप्त नहीं हुआ, विफल हो गए। क्यों? चपल सुखलावला की रे, क्योंकि क्षणिक भौतिक और नाशवान सुख के पीछे मैंने उन दुर्जनों की सेवा करके अपने इस सारे जीवन को विफल बना दिया, जाया कर दिया। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, मनुष्य जन्म पाइनो राधा कृष्ण ना भाजिनो, जानिया शून्य विष खाइनो। कि आपको मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है और यदि आप भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हो तो जानबूझकर आप जहर खा रहे हो। इसलिए नारद मुनि समझा रहे हैं कि हमारा प्रथम कर्तव्य है कि साधुओं का संग करके सबको भगवान का भक्त बनाने के लिए गीता और भागवतम का प्रचार करें। नारद मुनि बता रहे हैं कि भगवत कथा हर जगह फैलेगी तो कलयुग जो है वो अपना प्रभाव नहीं दिखा सकेगा। अपना नाम संकीर्तन के द्वारा जब जीवों का हृदय पवित्र हो जाएगा तो सब जगह झगड़े करने की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी और ये होती है वास्तविक क्रांति। लेकिन भक्तों, ये कार्य बहुत ही जिम्मेदारी का है। श्री प्रभुपाद जी के हर एक सैनिक को ये चैतन्य महाप्रभु का मिशन है और हम सब चैतन्य महाप्रभु के सैनिक हैं और हमें अपने लेवल तक ये कार्य करना है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसमें भाषा का भी कोई महत्व नहीं है। जैसे श्री प्रभुपाद ने तात्पर्य में एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है कि यदि आपके घर में आग लग जाती है तो आपके पड़ोस में भले ही कोई विदेशी व्यक्ति रहते हैं जो आपकी लैंग्वेज को नहीं समझते हैं, लेकिन जब आग लगेगी, जब इतना खतरनाक मतलब जान जो है वो जोखिम में चली जाती है, फिर आप किसी भी तरीके से अपनी भाषा उसको समझा दोगे और वो मदद आपकी करेगा। इसलिए भाषा महत्व नहीं, भाषा का कोई महत्व नहीं है। जर्मन चीनी समझ जाएंगे, कोई किसी से द्वेष मतलब नहीं करेगा, जाति वर्ण कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। यदि सबके हृदय में भगवत प्रेम उत्पन्न हो जाएगा तो सब कोई प्रेम की भाषा बोलेंगे, भक्ति की भाषा बोलेंगे। और श्री प्रभुपाद जी बताए हैं कि मेरे इन शब्दों में हो सकता है कि कोई गलती हो, क्योंकि अंग्रेजी मेरी मातृभाषा नहीं है, फिर भी मैंने अपनी ओर से प्रयास किया है। लेकिन अगर इसमें गलतियां हैं भी तो भी मैं इस श्लोक का आश्रय ले रहा हूँ, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है। नारद मुनि कह रहे हैं कि ऐसा साहित्य जिसमें भगवान का गुणगान किया गया हो, यस्मिन् प्रतिश्लोकमाभाधवत्यपि, कि अगर भगवान की भक्ति, भगवान का गुणगान, भगवान के नाम गुण लीलाओं का यश जब यदि उस शास्त्र में बता दिया गया है तो भले ही उसके हर एक शब्द में त्रुटि हो, यानी कि भले उसमें बहुत सारा मतलब अच्छे तरीके से उसको नहीं व्यवस्थित किया गया हो, श्लोकों में, श्लोकों की ट्रांसलेशन में या लैंग्वेज में जो है ना वो सही तरह से नहीं उसको करा गया हो, हालांकि भगवान के गुणगान में कोई दोष नहीं, तो भी यदि बोलने में या भाषा में कोई दोष दिख रहा है तो भी वो दोष इतना गंभीर नहीं है, क्योंकि विषय भगवान है। यदि मूल विषय भगवान है तो भले वक्ता में कोई दोष हो, उच्चारण में गलती हो, वो इतना ज्यादा विद्वान नहीं हो, लेकिन फिर भी उसकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। जब श्री प्रभुपाद जी ने शुरू में अमेरिका में प्रचार किया था तो वो सब आते थे भारत में शिक्षा देने के लिए, तो भारतीय जो पंडित होते थे वो बोलते थे ये अंग्रेज शिक्षा देंगे, इनको तो श्लोकों को सही तरह से उच्चारण करना भी नहीं आता, वो हमें बताएंगे। तो भले ही उन लोग, क्योंकि उनकी मातृभाषा नहीं, वो संस्कृत जब बोलते थे तो उनका उच्चारण इतना परफेक्ट नहीं होता था, लेकिन श्री प्रभुपाद जी बोले कौन से शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है कि यदि आप संस्कृत का श्लोक सही तरह से उच्चारण नहीं कर सकते तो भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होगी। ऐसा कोई शास्त्र है? ब्राह्मणों को पूछ रहे हैं श्री प्रभुपाद जी, क्या ऐसा कोई शास्त्र है जिसमें लिखा हुआ कि यदि आप संस्कृत का श्लोक सही तरह से उच्चारण नहीं कर सकते तो भगवान की कृपा के पात्र नहीं होंगे? बल्कि तो सारे पंडित जो है ना वो चुप हो गए, लेकिन श्री प्रभुपाद जी ने कहा क्या ऐसा कोई शास्त्र है जिसके अंदर लिखा हो कि आपको सारे संस्कृत के श्लोक कंठस्थ हो लेकिन आपके हृदय के अंदर भगवान के लिए प्रेम नहीं, भक्ति नहीं है, समर्पण का भाव नहीं है, तो क्या आपको आप भगवान को प्राप्त करोगे? वैसे इसका मतलब ये नहीं है कि हमें भगवान के शब्दों को उच्चारण करना नहीं सीखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये है कि महत्व क्या है, ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम भगवान से प्रेम करते हैं, ताकि हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। बाकी अपना नाम यश कमाने के लिए कि लोग कहेंगे कि भाई हाँ कितना अच्छा इसको बोलना आता है, कितने अच्छे श्लोक उच्चारण, इसलिए नहीं। और अगर शब्द सही मुंह से नहीं भी उच्चारण हो रहे, यदि हम सिंसियर हैं, हम भगवान के नाम का प्रचार करना चाह रहे हैं, तो मूल विषय तो भगवान की भक्ति हम दे ही रहे ना, तो यदि कोई वक्ता के अंदर कोई गलती होती है तो कोई है ना उसके अंदर त्रुटि होती है तो उसके अंदर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसे विदेशी भक्त जिनको कोई आध्यात्मिक फैसिलिटीज भी नहीं थी, उनकी आध्यात्मिक संस्कृति भी नहीं थी, ऐसे वातावरण से आकर वो पूरी सिंसियरिटी के साथ अपना तन मन धन भगवान की सेवा में लगाते हैं। अगर इसमें थोड़ा बहुत दोष श्लोकों का उच्चारण अगर सही नहीं है तो इसकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात है शुद्ध भक्ति, आदेश का पालन और एज इट इज प्रचार। जैसा मेरे गुरु महाराज ने बताया है उसमें मैं अपनी इच्छा से ना कुछ डाल रहा हूँ और ना ही कुछ, जैसा शास्त्र में वेद व्यास जी ने कहा है, मैं आपको ऐसे का ऐसा बताने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ, उस चीज को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसी तरह से हमारे हृदय से सारे भेदभाव समाप्त हो जाएंगे, जैसे भगवान की दृष्टि में सब समान है और सभी भगवान की सेवा करने के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। इसी श्री प्रभुपाद ने इस श्लोक का आश्रय लिया है, बोला अगर मैंने कुछ शब्दों की गलती भी की, उच्चारण की गलती भी की है, अगर मैंने अच्छे तरीके से रचना नहीं की है तो भी मैं इस श्लोक का आश्रय ले रहा हूँ। अगर मेरे पपट में कोई भूल चूक हो गई है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं केवल भगवान का गुणगान करना चाहता हूँ और जहाँ पर भगवान का गुणगान है उसी गुणगान से हृदय पवित्र होगा और ये यही एकमात्र मार्ग है सारे जगत के कल्याण का मार्ग। इसलिए हमें कृष्ण भक्ति के पथ को बड़ी गंभीरता के साथ स्वीकार करना है और जो भी श्रवण कर रहे हैं उसका प्रचार करना है, जिससे सारे जगत का ये जो भेदभाव है, जो हृदय के अंदर इतना द्वेष भाव भरा हुआ है, वो सब समाप्त हो जाएगा, सबका भला होगा। और श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि इसके अतिरिक्त और कोई तरीका नहीं है इस संसार के दूषित वातावरण को शुद्ध करने का। तो हम सबको ये हृदय के अंदर ये निश्चय करना है कि हम सब जितना भी श्रवण करते हैं, जितना भी समझ में आता है, उसका अपनी क्षमता के अनुसार प्रचार करेंगे। वास्तव में हमें केवल आगे बढ़ना है, गुरु गौरंग और समस्त वैष्णवों का, समस्त परंपरा का हमारे ऊपर हाथ होता है, वो सब हमें हमारी सहायता करते हैं। चैतन्य महाप्रभु सहायता करते हैं, नित्यानंद प्रभु सहायता करते हैं, श्री प्रभुपाद जी हमारे साथ हैं। हमें अपनी ओर से कोशिश करनी है, एक एक करते करते यह संसार का भगवतमयी हो जाएगा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कह के गए हैं पृथ्वी त्याज यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई बेमोरा नाम। एक दिन आएगा जब पृथ्वी के हर नगर और गांव में यह हरि नाम का प्रचार होगा और सब लोग भगवान के इस प्रेम में शुद्ध वातावरण में झूमेंगे। और ये चैतन्य महाप्रभु का मिशन है जो श्री प्रभुपाद जी ने उसका बेड़ा उठाया और हम सब उसी मिशन की एक कड़ी है। तो हमें अपनी ओर से प्रयास करना है। गुरु महाराज और गौरंग महाप्रभु हमारी सिंसियरिटी को देखते हैं और वो हमें उतना आशीर्वाद प्रदान करते हैं जितना कि हम डिजर्व करते हैं और उससे ज्यादा हम सेवा करेंगे। तो जितना हमारा प्रयास होगा उतनी ही कृपा प्राप्त होगी। तो हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं अपनी सेवा अच्छे से कर सकूं और समय पे आपको श्लोक सेंड कर सकूं। हरे बोल।